लीडर चेंज क्रिएट करने वाला होता है। अगला लेसन, रिसोर्सेज को अपनाइए, मेहनत कीजिए और नतीजा किस पर छोड़िए, अल्लाह पर छोड़ दीजिए। ज़ुल्कर नैन की कहानी हमें यह बताती है। और इस दुनिया में ये उसूल याद रखिए, बाज़ लोग कहते हैं जब तकदीर में होगा तो नौकरी मिल जाएगी, जब तकदीर में है ही नहीं रिस्क तो फिर मैं कारोबार के लिए इतनी मेहनत क्यों करूं। दुनिया का उसूल याद रखिए, मिलेगा उतना ही जो तकदीर में लिखा है, लेकिन एक उसूल है इसके साथ अटैच्ड। दुनिया में कामयाबी मिलती है मेहनत जब उससे पहले हो चुकी होती है। कामयाबी का प्री रेक्विजिट मेहनत है, हार्डवर्क है। रिस्क मिलेगा जितनी आप मेहनत करते जाएंगे, अल्लाह देता जाएगा। याद रखें, अल्लाह ने आपको और मुझे यहां कोशिश के लिए भेजा है, वरना अल्लाह को क्या जरूरत थी इतनी बड़ी इंसानियत बनाने की और इतनी बड़ी अपनी डोमेन बनाने की, जो फरिश्ते बैठकर जो हैं वो हर इंसान के पीछे पीछे होते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसके अमाल को लिखते रहते हैं बैठ के। अल्लाह ने मुझे और आपको इस दुनिया में भेजा है तकदीर के साथ, लेकिन साथ में विल पावर अटैच कर दिया। तो हमेशा असबाब को अपनाइए और मेहनत को जारी रखिए। और एक बात, अगली चीज जो याद रखने की है वो ये कि अल्लाह जिस इंसान को जितनी भी ताकत देता है, अल्लाह देखता है उसने इस ताकत को कहां इस्तेमाल किया। आपके पास बोलने की ताकत है, देखने की ताकत है, चलने की ताकत है, सेहत की ताकत है, उम्र की ताकत है, माल की ताकत है। अल्लाह पूछेगा कहां इस्तेमाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम आता है कि कयामत के दिन इब्ने आदम के कदम अपनी जगह से हिल नहीं सकेंगे जब तक कि वो पांच चीजों का जवाब ना दे दे। अल्लाह ने जो उम्र दी थी वो कहां लगाई, कहां मसरूफ रहे सारी उम्र। और दूसरा सवाल खास तौर पर जवानी के बारे में होगा, जो अल्लाह ने जवानी का स्पैन दिया था, यूथ का, एडल्टहुड का, वो किन कामों में गुजारा, क्या मसरूफियात थी, क्या हॉबीज थी, कहां दिल लगता था, कहां दिन और रात गुजरते थे, क्या करने का दिल चाहता था। अल्लाह पूछेगा जो मैंने तुमको माल दिया था वो कहां से कमाया और कहां खर्च किया। अल्लाह पूछेगा जो मैंने तुमको सेहत दी थी उसको जब सेहत थी तो किन एक्टिविटीज में मसरूफ रहे। और आप सोचें कि अल्लाह ताला ने ये दो नेमतें हर इंसान को दिया, और अगला सवाल वक्त का होगा, वक्त को कैसे इस्तेमाल किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम आता है कि दो नेमतें इंसानियत को अबंडेंस में दी गईं, और दोनों नेमतों की इंसानियत ने नाशुक्री की। एक है वक्त और दूसरा क्या है, सेहत। इंसान अपनी सेहत में अल्लाह को याद नहीं करता। जब जरा सी बीमारी आती है और डॉक्टर कहते हैं आप 6 टेस्ट करवा लें, फिर देखें जरा नमाजों की लेंथ क्या लंबी होना शुरू होती है, फिर देखें जुबान कैसे जिक्र करना शुरू करती है, फिर देखें हाथ कैसे सदका करता है। ये इंसान का हाल है, अपनी सेहत की फिक्र नहीं करता और सेहत की कदर नहीं करता। अगला लेसन, उलमा कहते हैं कि याजूज माजूज क्योंकि इस कौम के लिए तकलीफ का बायस थे, तो उसकी वजह भी थी। एक जिस कौम के लिए ये आकर उनके ऊपर हमला करते थे, उस कौम ने क्या कहा था ज़ुल्करनैन से कि ये वो कौम थी, ला यकादूना यफ़क़हूना, ये वो लोग थे जिनको कोई फिक हासिल नहीं था, ये बात नहीं समझ सकते थे। और आपको उस वक्त बताया था कि फिक के अंदर स्कॉलर्स कहते हैं कि इसका मतलब है कि इनके पास कानून भी नहीं था, लॉ नहीं थी, और उनके पास रिलीजन नहीं था। तो याद रखें, जब आपके पास ये दो चीजें नहीं होंगी, शरीयत नहीं होगी और इल्म नहीं होगा, यू विल एक्सपोज योर सेल्फ फॉर द क्राइम्स। लोग आपके साथ जो है वो आपको ऑब्जेक्ट ऑफ क्राइम का निशाना बनाएंगे, लोग आपके साथ आकर जुल्म करेंगे, लोग आपके साथ आकर ज्यादती करेंगे। और ये जब इंसान में ये चीजें होती हैं कि जब इंसान के पास इल्म नहीं होता और शरीयत नहीं होती, तो इंसान आजजी का, इज्ज का शिकार हो जाता है, लेजीनेस का। आप सोचें ये मशवरा किसने दिया था कि दीवार बनाए, ये ज़ुल्करनैन ने दिया था या इसी कौम ने दिया था। इसी कौम ने दिया था, मशवरा भी इनका था, ज़ुल्करनैन का नहीं था, मटीरियल भी इनका था और मेजोरिटी मैन पावर भी इन्हीं की थी, तो खुद क्यों ने दीवार बना ली, ज़ुल्करनैन का क्यों इंतजार किया। लेजीनेस थे, और लेजीनेस उस वक्त आती है जब इंसान के पास इल्म की कमी होती है, जब इंसान फोकस्ड नहीं होता। आज दुनिया का इतना इल्म होने के बावजूद भी हमारे बच्चे बोरियत का नारा लगाते रहते हैं ना, इसका मतलब है वो इल्म अपने अंदर कमी रखता है। उस कमी को पूरा करने के लिए उनकी जिंदगियों में कुरान को पेनिट्रेट करने की जरूरत है, तो वो अपनी जिंदगियों को जाया नहीं करेंगे, वो अपनी जिंदगियों को वेस्ट नहीं करेंगे। अगला सबक यह है कि ये कहानी बताती है कि लीडर होना कोई बुरी बात नहीं है, हाँ अपनी जिम्मेदारी का एहसास फिर बहुत ज्यादा होना चाहिए। हजरत उमर रदी अल्लाह अन कहा करते थे कि जब तुम्हें अल्लाह ताला ने बहुत नरम बिस्तर दिया हो तो एक रात उस बिस्तर पर लेटो और एक रात जमीन पर लेटो। क्यों? ताकि जब तुम अगली रात उस बिस्तर पर लेटो तो तुमको अपनी नेमत की कदर आए, अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया जाए कि अल्लाह ताला ने जो नेमत दी है मुझे इसका हिसाब देना होगा। तो जिसको अल्लाह ये मुकाम दे दे कि उसके अंडर लोग आते हों, उसको अपने अंदर बहुत आजजी लाने की जरूरत है और अपनी जिम्मेदारी को महसूस करने की जरूरत है। याजूज और माजूज की कहानी आपको और मुझे क्या बताती है? हम अभी यही बात कर रहे हैं कि हमें नहीं पता याजूज और माजूज कहाँ है। यह हमें यह बताती है कि इंसान की अक्ल कितनी लिमिटेड है। क्या हम अपने जिस्मों के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन रखते हैं? इस वक्त हमारे जिस्म में क्या चीज जो है वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सही चल रही है और क्या चीज जो है वो बीमारी का शिकार हो चुकी है, कौन जानता है? हम नहीं जानते हैं। तो जब मुझे और आपको अपने जिस्म की इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है, जब मुझे और आपको इतना सारा इल्म आने के बावजूद जो आसपास हमें हिस्ट्री का मिलता है उसके बावजूद याजूज माजूज का ट्रेस नहीं मिलता, तो मैं वाजह ये बात बता रही है कि असल इल्म किसके पास है? अल्लाह के पास है। तो ये जो आपको अल्लाह की तरफ से इल्म कुरान की शक्ल में मिला है, इस पर अमल नहीं करेंगे? इस पर अमल करना है, ये अमल के लिए भेजा गया है। ये मुर्दों को सवाब पहुंचाने की किताब नहीं है, ये मुर्दों को नहीं फायदा देगी। ये मेरे मरने के बाद मेरी औलाद पढ़ेगी तो मुझे फायदा नहीं देगी। हाँ ये मुझे फायदा देगी जब मेरे मरने के बाद मेरी औलाद पढ़ेगी और इस पर अमल करेगी, तो उनकी नेकी का सवाब मुझ तक पहुंचेगा। इस चीज को समझें। बास स्कॉलर्स कहते हैं कि आप पढ़ेंगे तो मुर्दे तक पहुंचेगा, वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर समझता है। कोई हदीस नहीं बयान करती इस चीज को, कोई सही हदीस नहीं मिलती आपको इस डिस्क्रिप्शन में कि आप मुर्दों के इसाले सवाब के लिए बैठकर जो है वो सब लाइन बनाकर कुरान पढ़ना शुरू कर दें। हदीस नहीं मिलती है, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं, वल्लाहु आलम, स्कॉलर्स हैं, हम एहतराम करते हैं उनकी ओपिनियन का, लेकिन कुरान किताब हिदायत है। मुर्दे को क्या हिदायत मिल सकती है? आप मुर्दे को क्या गाइडेंस दे सकती हैं? गर्मी हो रही है, आप मुर्दे से कहें कब्र से बाहर आके बैठ जाओ तुम्हें गर्मी कम लगेगी, तो मुर्दा आपकी बात सुनेगा? हमारा तो हाल ही बुरा है, हम कहते हैं हाँ मुर्दे तो बात भी सुनते हैं। कहां कहां से हम लोगों को पकड़ेंगे और उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे, मगर पकड़ना है और ठीक करना है, अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी डाली है। तो अल्लाह का इल्म कामिल है और अल्लाह ही जो है वो इंसानों का मुकम्मल इल्म रखता है। इमाम शौकानी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें यह सिखाया है कि इंसान कभी भी किसी दूसरे की गलती को देखकर, और जबकि वो दूसरा सुन रहा हो कि आप उसकी इसलाह कर रहे हैं, आप एज अ थर्ड पर्सन उसकी गलती को बहुत ज्यादा जो है वो फैलाते मत फिरें। जैसे वो इमाम शौकानी कहते हैं कि एक शख्स था जो अपने रूलर्स के खिलाफ बहुत ज्यादा हर वक्त कहता रहता था बहुत ही नाइंसाफ रूलर्स हैं, बहुत ही नाइंसाफ बादशाह हैं, इनको जो है वो इलाके में इंसाफ कायम करना नहीं आता, ये पैसा हड़प कर जाते हैं और ये कर लेते हैं। आपको तो हमारी कहानी लग रही है ना, हम भी तो यही करते रहते हैं। इमाम शौकानी कहते हैं कि अल्लाह ने उस शख्स को आजमाया, रूलर्स के पास तो पूरा मुल्क था ना, अल्लाह ने उस शख्स को जमीन का छोटा सा टुकड़ा दिया और उसने उस छोटे से टुकड़े के ऊपर ही इतनी ना इंसाफी की, इतना जुल्म किया कि उसका वो जुल्म और ना इंसाफी उस रूलर के मुकाबले में ज्यादा बढ़ गया। तो दूसरों की गलतियों को एक्सपोज ना करें, ये बहुत बड़ा क्लेम होता है कि अगर हमें मिला तो हम तो ऐसा करेंगे, हम कर ही नहीं सकते। अगेन हमने यही सीखा कि हमने अपनी हर नेमत को अल्लाह के साथ जोड़ना है, हमारी प्लानिंग की कोई हैसियत नहीं है। और आखिरी सबक जो इसके अंदर स्कॉलर्स बताते हैं इस कहानी में वो ये कि लीडर को जल्दी गुस्सा नहीं आना चाहिए, बहुत जरूरी। और आप सब अपनी अपनी जगह पर लीडर हैं, मैंने इसलिए कह दिया, किसी ना किसी कैपेसिटी में आप लीडर हैं। आप मां हैं तो आप लीडर हैं, आप बड़ी बहन हैं तो आप लीडर हैं, आप बड़ी कजन हैं तो आप लीडर हैं, आप दोस्तों में प्रोमिनेंट हैं। हमेशा दोस्तों के अंदर, दोस्तों के सर्कल में एक बहुत टॉकेटिव चैटर बॉक्स होता है ना, अगर आप वो चैटर बॉक्स हैं तो ऑलमोस्ट आप लीडर हैं। बनिए लीडर पे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील कीजिए, आप सब लीडर हैं। और बाज़ोकात हमें नहीं पता होता कि हमें कौन फॉलो कर रहा है, हर इंसान अपने पीछे अपने फुटस्टेप्स छोड़कर जा रहा है। आपको नहीं पता कितने लोग आपको फॉलो करते हैं, कितने लोग आपके पीछे और आपके लाइफस्टाइल जैसी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। तो इमाम शौकानी और दूसरे स्कॉलर्स कहते हैं कि लीडर को चाहिए कि अपने अंदर नरमी और टॉलरेंस पैदा करे, आज बड़ी बहन में छोटे बहन भाइयों के लिए टॉलरेंस नहीं है, आज माँ के अंदर औलाद के लिए टॉलरेंस नहीं है, शौहर के अंदर बीवी और बच्चों के लिए टॉलरेंस नहीं है, जो जहां लीडर है उसमें टॉलरेंस की कमी है। और ये सारी चीजें कैसे ठीक होंगी, हर इंसान को कुरान से जुड़ते जाइए, इंशाल्लाह खुद ब खुद करेक्शन होती जाएगी। आप देखें अभी तक इस मुकाम तक सूरह कहफ के अंदर तीन बादशाहों का जिक्र आ गया, एक बादशाह वो किंग डीसीएस जिसको हमने असावे कहफ के रेफरेंस में देखा था, जो कि पेगन बादशाह था जिसको दकियानूस कहा जाता है, और उसने अपने जुल्म की वजह से असावे कहफ को मुश्किल का शिकार किया था। दूसरा बादशाह हमने देखा था वो बादशाह जो कि प्रॉपर्टी जबरदस्ती छीन लिया करता था, जो कि हजरत मूसा और खदर की कहानी में था। तीसरा बादशाह जो कि हमें अब नजर आ रहा है ज़ुल्कुरनैन की शक्ल में, और ये एक जस्ट रूलर था। ये तीन कैटेगरीज आज भी मिलती हैं, जुल्म करने वाले बादशाह जो लोगों को दीन पर अमल नहीं करने देते हैं, उनके लाइफस्टाइल को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहते हैं, वो रूलर्स जो कि लोगों की प्रॉपर्टी स्नैच करते हैं और अल्लाह के नेक बंदे और रूलर्स भी हैं। ये तीन कॉम्बिनेशन हमें आज भी दुनिया में मिलते हैं, और अल्लाह ताला ने ये जो इतनी कहानियां यहां चार कहानियां सुनाकर सूरह कहफ का इतना हिस्सा मुकम्मल किया है, इसमें हमारे लिए बहुत से सबक हैं। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम हर जुमे सूरह कहफ को पढ़ें और इसके साथ एक ताल्लुक डिवेलप कर सकें, ताकि ये ताल्लुक हमें जिंदगी में अल्लाह से जोड़ कर रखे। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम के ऊपर सूरतुल कहफ का सेवेंथ पोर्शन जो है, सेवेंथ हिस्सा, वो मुकम्मल हो गया। और ये सेवेंथ हिस्सा जो कि कहानी था, अब आगे 99 आयत से खुतबा शुरू होगा। अच्छा 99, हाँ मैंने कल भी 99 पढ़ी थी, उसकी वजह मैं आपको बता देती हूँ। एट पार्ट टेक्निकली जो 99 से शुरू होगा और 110 तक जाएगा, आयत नंबर 99 इज इन बिटवीन सेवेंथ एंड एट्थ, इसको दोनों एंगल से लिया जाता है, इसलिए आपको मालूम होगा मैंने कल ये आयत उस किस्से में पढ़ ली थी। ये जो हिस्सा एट्थ हिस्सा है, इसमें अब आपको क़यामत का जिक्र मिलेगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अथॉरिटी के बारे में पता चलेगा और अल्लाह की शान के बारे में पता चलेगा। खत्मे सूरत की आयात हैं और अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया कि अल्लाह ताला जिन मेजर साइंस के पीछे जिक्र करते आ रहे हैं, चाहे वो दज्जाल हो, चाहे वो याजूज और माजूज हो, या वो जो मेजर साइन हमने अहदीस से देखे, अल्लाह ताला वो सब कायम करेगा और उसके बाद क़यामत आ जाएगी। और आपको कैसे ये वाला खुतबा पिछली कहानी से स्विफ्टली कनेक्ट होता हुआ मिल रहा है, याजूज और माजूज जो कि क़यामत के करीब आएंगे, और अगला ही ट्रांजिशन अल्लाह ताला ने आयात के अंदर जो लेकर आ गए वो क़यामत के ऊपर आ गया। आयत नंबर 99 में फरमाया वतरकना बअदहुम यौमाइज़िन यमूजू फी बअदिन, और उस दिन हम उनको छोड़ देंगे वो वेव्स की तरह एक दूसरे के ऊपर जो है वो रोल हो रहे होंगे। ये आयत नंबर 99 जो है ये पिछले हिस्से से कैसे कनेक्टेड है, स्कॉलर्स कहते हैं कि जब दीवार गिर जाएगी तो अल्लाह याजूज और माजूज को वेव्स की तरह छोड़ेंगे। अब आपको बता दिया तादाद में बहुत ज्यादा है, ह्यूमंगस है, इंसानियत के मुकाबले में कई गुना ज्यादा है। और जब आप एक चीज को बहुत ज्यादा छोड़ देते हैं, कभी आप देखें कभी सीजन आता है तो सी शोर के ऊपर जो है वो क्रैब्स के बेबीज कितने सारे आ जाते हैं, बास जगहों पर, बास मुल्कों में तो वो पूरा शोर जो है वो रेड हो जाता है रेड क्रैब्स की वजह से, तो आप उनको काउंट तो नहीं कर सकते। तो याजूज और माजूज के लिए भी आता है कि ऐसे ही इनके जो है वो फ्लॉक्स के फ्लॉक्स, स्वाम्स के स्वाम्स जो है वो निकलेंगे। तो एक आयत इसका मफहूम यह बनता है कि अल्लाह याजूज और माजूज को वेव्स की तरह छोड़ देंगे और एक के बाद एक ग्रोह जो है वो आएगा। जब इसको याजूज और माजूज से कनेक्ट किया जाएगा तो यौमा इज़िन का मतलब होगा दीवार गिरने का दिन, और बअदहुम जो आया है इसका मतलब क्या होगा, ये हुम जो है ये याजूज और माजूज है। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक ये आयत याजूज और माजूज के बारे में आई है, सही। अगर आप इसी आयत को सूरतुल कहफ के आखिरी हिस्से से जो कि खुतबा है अल्लाह का, अल्लाह का कलाम है, इससे मिलाकर पढ़ेंगी तो आपको पता चलेगा यौमा इज़िन क्या है, कयामत का दिन। अब ये कयामत का दिन होगा, यानी ये दीवार गिरने के बाद का मामला होगा, और ये जो यहां पर आया है या मूजू फी बादिन, इसका मतलब है सब इंसानियत जो है वो अल्लाह की तरफ, अल्लाह की पुकार की तरफ जमीन से निकलते आएंगे और दौड़ते रहेंगे। ये कुरान की खूबसूरती है कि कुरान आपको ये इतना ब्रॉड मफहूम दे रहा है। और कुरान की एक और खूबसूरती देखें कि आयत नंबर 98 में ज़ुल्करनैन का कोटेशन था, उसका बात थी, उसकी स्टेटमेंट थी, उसने कहा था कि जब तक मेरे रब का वादा नहीं आएगा ये दीवार कायम रहेगी, और जब आएगा तो ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। और आप देखें अल्लाह हिस्ट्री में से निकाल के फौरन फ्यूचर में ले गया इंसान को, और फिर भी आपको कुरान का कनेक्शन और कुरान का नज़म, कुरान का रब्त, ऑर्गेनाइजेशन महसूस हो रहा है। ये स्मूथ ट्रांजिशन है जो आपको यहां सूरत के नजर आ रही है। जब हमने सूरह कहफ शुरू की थी तो वहां बिल्कुल शुरू की 10 आयात में अल्लाह ताला ने बताया था कि जिंदगी में, दुनिया में आजमाइशें आती हैं, उन आजमाइशों में जो चाहता है कि वो यहां से वहां बज ना करे, वो कुरान को थाम ले। और अल्लाह ने बताया था कि हमने जमीन बनाई है लीना बलुआ हूं, ताकि हम तुमको आजमाएं। और जो सूरत का इख्तिताम है वो इस पॉइंट पर हो रहा है कि वो दुनिया जो कि आजमाइशों की दुनिया थी, वो कुरान जो तुमको जिस चीज से वार्न कर रहा था, वो हकीकत आके रहेगी। और जब वो हकीकत आएगी तो इंसानों को जज किया जाएगा और जज अल्लाह होगा। वनुफिका फिस्सूर, और सूर में फूंक दिया जाएगा। फजमा अना हम जमा, तो हम सबको जमा कर लेंगे कि जैसे जमा किया जाता है। सूर मीन्स अ हॉर्न, ऑन कहते हैं, और इसका मतलब है ट्रम्पिट। एक अरब्स ट्रम्पिट इस्तेमाल किया करते थे किसी चीज की इंफॉर्मेशन पहुंचाने से, कोई ऐलान करने से पहले, तो उनको उन्हीं की जुबान में बताया, कोई बगल होगा बड़ा सा जिसके अंदर जो है इसराफील अलैहिस्सलाम जो है वो ब्लो करेंगे। इसराफील अलैहिस्सलाम वो फरिश्ते हैं जिनको अल्लाह ताला ने सिर्फ इसी मकसद के लिए बनाया है। और जब से अल्लाह ने इनको बनाया है, अहादीस बताती हैं कि ये अपने उस सूर के ऊपर, उस बगल के ऊपर मुंह रख के खड़े हुए हैं, और इनकी निगाहें अल्लाह के अर्श की तरफ फिक्स्ड हैं, और ये इंतजार में हैं कि किस वक्त अल्लाह हुक्म देगा और ये इस बगल के अंदर जो हैं वो ब्लो कर देंगे और सूर फूंक दिया जाएगा। अहादीस में जो सही अहादीस है उससे पता चलता है कि ये सूर फूंकने का मरहला 2 स्टेप्स में होगा, यानी 2 मरतबा सूर फूंका जाएगा, और कुरान भी इसकी गवाही देता है। पहली मरतबा जब सूर फूंका जाएगा तो अल्लाह सब मखलूकात को मौत दे देगा, और जब दूसरा सूर फूंका जाएगा तो ये सारी मखलूकात जो हैं ये अल्लाह के हुक्म पर दौड़ पड़ेंगी, अल्लाह की तरफ दौड़ पड़ेंगी। और इन दो जो ये जो 2 ट्रम्पेट्स ब्लो किए जाएंगे, इनमें कितना डिफरेंस होगा वल्लाहु आलम। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से सही बुखारी और सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं रसूलुल्लाह ने फरमाया कि इन 2 सूर के दरमियान में 40 का डिफरेंस होगा, 40 का। तो जो नरेटर हैं वो अबू हुरैरा हैं। बाद में आने वाले लोगों ने हजरत अबू हुरैरा से पूछा कि 40 से क्या मुराद थी अल्लाह के रसूल की। उन्होंने पूछा कि 40 से मुराद 40 दिन थी। अबू हुरैरा ने कहा मुझे नहीं मालूम, वल्लाहु आलम। लोगों ने पूछा क्या 40 महीने थी। अबू हुरैरा ने कहा मुझे नहीं मालूम, वल्लाहु आलम। लोगों ने पूछा क्या 40 साल थी। हजरत अबू हुरैरा ने कहा वल्लाहु आलम, मुझे नहीं मालूम। तो अल्लाह के रसूल ने ये एम्बिगुअस बात छोड़ दी है, इट्स एन ओपन एंड, कि 40 दिन के बाद दूसरा सूर फूंका जाएगा, 40 महीनों के बाद या 40 साल के बाद कोई नहीं जानता है। जब पहले सूर के बाद पहला सूर फूंका जाएगा तो सब मर जाएंगे, सारी इंसानियत खत्म हो जाएगी, सारी क्रिएशन खत्म हो जाएंगी जितनी भी जमीन पर होंगी। उसके बाद वल्लाहु आलम कब वो 40 का नंबर पूरा होगा, अल्लाह ताला एक बारिश भेजेगा जमीन के ऊपर, और बिल्कुल जैसे बारिश के बाद जमीन से सीडलिंग्स निकलती हैं, इसी तरह से अहादीस में आता है कि इंसान पौधों की तरह जमीन से ग्रो करेंगे, और फिर उसके बाद जो है फिर सूर फूंका जाएगा, ये सेकंड ट्रम्पेट ब्लो होगा। उसके बाद रूहों को जिस्म के साथ लौटा दिया जाएगा, इसलिए कि रूहें कहाँ होती हैं, जब इंसान मर जाते हैं तो 2 ही मुकाम है जहां पर रूहें रखी जाती हैं, एक है इल्लियीन का और एक है सिज्जीन का। जिस वक्त इंसान जमीन में चले जाएंगे और पूरी ह्यूमैनिटी को और पूरी क्रिएशन को मौत आ जाएगी पहले सूर के बाद, दूसरा सूर जब फूंका जाएगा तो ये सारी ह्यूमैनिटी को अल्लाह ताला जो है वो इस जमीन से निकालेगा। पहले ग्रो हो जाएंगे और जब सूर फूंका जाएगा तो रूहें डाल दी जाएंगी और इनको लौटा दिया जाएगा, और फिर ये अल्लाह की तरफ, महशर की तरफ, रोजे हशर की तरफ दौड़ेंगे। और कैसे दौड़ेंगे इंसान, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुफातन बेयर फुटेड, नंगे पांव, उरातन नेकेड, कपड़े नहीं होंगे, उजलन अनसर्कमसाइज्ड। इतना डिस्क्रिप्टिव इजहार अल्लाह की तरफ से जो आ रहा है, इस वक्त की तैयारी हमने क्या की है। कभी कभी आप हदीस पढ़े होते हैं, आपको लग रहा होता है कि इससे बड़ा ओपन बुक एग्जाम क्या हो सकता है, लेकिन इंसान इतना गाफिल है हम और हकीकत है, ये दुनिया इतना अपने विशेष सर्कल में खींचती है, द मोमेंट आप इस क्लास से बाहर निकलते हैं, बल्कि शायद द मोमेंट हम यहां दुआ पढ़ते हैं, ऐसे लगता है डायमेंशंस ही बदल जाती हैं इंसान के फेशियल एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। जब जहां बैठी होती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आप में से बहुत से लोगों के जितने भी इन दो कमरों में बैठे हैं सभी के चेहरे नजर आ रहे होते हैं एंड आई कैन सी डिफरेंट कलर्स ऑन योर फेसेस कि जब जब कोई बात अल्लाह की आ रही होती है आपके चेहरों पर एक रंग आ रहा होता है और एक रंग जा रहा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। आई कैन सी द हैप्पीनेस ऑन योर फेस जब आप जन्नत का जिक्र सुनती हैं। आई कैन सी द फियर ऑन योर फेस जब आप जहन्नम का जिक्र सुनती हैं। लेकिन ये होता है कि हम बस कुरान की क्लास से उठते हैं और हमारे अंदर से वो जज्बात जो हैं वो एकदम से ऐसे लगता है कि फुक करके गायब हो जाते हैं जैसे जिन नहीं फुक करके गायब हो जाता। तो क्या करें फिर? बस इतनी सी बात है। जाहिर बात है 24/7 तो कुरान के सामने नहीं बैठ सकते बट यू हैव टू कनेक्ट योर सेल्फ विद द कुरान जिसकी जितनी कैपेसिटी है जिसकी जितनी गुंजाइश है कुरान के साथ जुड़िए। कुरान की क्लासेस में जाकर बैठिए। अल्लाह ताला फरमाएगा कमा खलकनाकुम अव्वला मर्रा हमने तुमको फिर वैसे ही पैदा कर दिया जैसे पहले पैदा किया था। और इस मौके के ऊपर जब लोग दौड़ रहे होंगे रोजे महशर की तरफ तो अहदीस में आता है कि बाज लोगों के इर्द गिर्द नूर का एक सर्कल होगा और ये कौन लोग होंगे? अल्लाह के नेक बंदे होंगे जो दुनिया में अल्लाह की इताअत की कोशिश करते रहते थे। परफेक्ट नहीं थे, हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, ना हम हो सकते हैं। हम में से कोई बेस्ट नहीं है, ना हम हो सकते हैं। हम अल्लाह के रास्ते में टूटी फूटी कोशिशें करने वाले लोग हैं, हम स्ट्रगल करने वाले होते हैं। और अल्लाह ने कुरान में कहा है इंसान के लिए कुछ नहीं है सिवाय इल्ला मा सा जिसकी उसने कोशिश की। अल्लाह मेरी और आपकी यही कोशिश देखेगा। यही दिन होगा जिसके लिए अहादीस में आता है कि सूरज जो है वो इंसान के माइल अवे आ जाएगा, इंसान के सर और सूरज में सिर्फ एक माइल का फर्क रह जाएगा। और इस गर्मी की वजह से जो गर्मी होगी ये गर्मी मोमिनीन को महसूस नहीं हो रही होगी बिकॉज उनके गिर्द एक पूरा सर्कल होगा। अब इमेजिन करें कि मोमिनीन एक नूर के बबल के अंदर होंगे, टेम्परेचर कंट्रोल्ड होगा उनका। जब अल्लाह ताला असाबे काहफ को टेम्परेचर कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में 300 साल तक सुला सकता है तो अल्लाह अपने नेक बंदों को रोजे मैशर में एक नूर के सर्कल में बंद करके जो है वो टेम्परेचर कंट्रोल करके भगा नहीं सकता। अल्लाह के हाथ में सब कुछ है। तो जो लोग होंगे जो अल्लाह की नाफरमानी करने वाले थे, जो अल्लाह को भूल जाने वाले थे, जो अल्लाह से गाफिल रहने वाले थे, वो उस दिन जब सूरज को अपने सर पर एक माइल अवे देखेंगे और गर्मी को महसूस करेंगे तो किसी का पसीना उसके एंकल्स तक आ रहा होगा, किसी का उसके नीज तक आ रहा होगा, किसी का उसके चेस्ट तक आ रहा होगा और किसी का उसकी नाक तक आ रहा होगा। वो अपने पसीने में खूब डूब रहा होगा। और ये वो वक्त होगा जिसके लिए अल्लाह ताला ने कहा फजमअनाहुम जमअ हम सारी इंसानियत को जमा कर लेंगे जैसे कि जमा किया जाता है। स्कॉलर्स कहते हैं कि इस वक्त जिन्नात भी इंसानों के साथ भाग रहे होंगे। बड़ा शौक है ना जिन देखने का, उस वक्त बराबर में जिन भी भाग रहे होंगे। कोई तैयारी है हमारी? हम नहीं चाहते कि ऐसे वक्त में जिसमें हमारे सोचें आपके बराबर में डायनासोर भाग रहा है, डायनासोर सारी मखलूकात भाग रही होंगी, जिन्नात भाग रहे होंगे। और बास स्कॉलर्स कहते हैं दिस विल बी द फर्स्ट टाइम इंसान जिन्नात को अपनी आंखों से देख रहा होगा। इसलिए कि अब ये दुनिया नहीं है, अब ये कौन सा आलम शुरू हो गया? ये आलम अमर शुरू हो गया, आलमुल गैब में आ गए। आप और मैं दुनिया छोड़ दी पीछे और आप और मैं आलमुल गैब के अंदर आ गए। इसलिए क्यामत का एक नाम जो है वो यौमुल जमा भी आता है, जमा होने का दिन, डे ऑफ गैदरिंग। और स्कॉलर्स कहते हैं अल्लाह कैसे जमा करेगा? लिअन्नल्लाह अजमा अल अव्वलीन वल आखरीन। तो एक कॉन्सेप्ट क्या है जमा करेगा कि अल्लाह सारी मखलूकात और इंसानों को जमा कर देगा। आप सोचें क्या टकरा रहे होंगे एक दूसरे से। तवाफ याद आता है, गर्मी का तवाफ, सर्दियों में भी तवाफ करते हुए पसीने छूट जाते हैं दिसंबर के महीने में भी, इसलिए कि इतना ज्यादा रश होता है। और गर्मियों का तवाफ सोच लें, इट्स सफोकेटेड। हम कभी कभी सोचते हैं कि कैसे हो सकता है कि इंसान भाग रहा हो और अपने पसीने में डूब रहा हो। आप तवाफ को जहन में लेकर आए जो आजकल होता है जिसमें हार्डली एक कदम भी आपका आगे नहीं जा रहा होता, आप लिटरली कोई आपको घसीट के आगे कर रहा होता है, आप घिसट घिसट के आगे जा रहे होते हैं। और जब लोग गर्मी में कोई चिपक जाता है आपके साथ तो कितनी तकलीफ होती है। लोग एक दूसरे के पसीने में डूब रहे होंगे। और एक स्कॉलर जो हैं वो ये पॉइंट भी कहते हैं जमा करने का, वो कहते हैं अल्लाह ताला स्टोन एज के इंसान को और लेटेस्ट 21st सेंचुरी के इंसान को जमा कर देगा। और आप सोचें हम देखेंगे उन लोगों को जो कि गारों में रहते थे, लेकिन किसी को किसी की परवाह नहीं होगी इसलिए कि सबके ऊपर हैबत तारी होगी, खौफ तारी होगा और सब नफसी नफसी के आलम में होंगे। सूरतुल वाकिया की आयत नंबर 49 और 50 में आता है قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخَرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَّا مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ अल्लाह अव्वल और आखिर सबको जमा कर देगा एक उस दिन के लिए जो कि अल्लाह ने फिक्स्ड कर रखा है। और जितने भी इस चारों स्टोरीज के किरदार हैं, चाहे असाबे कहफ हों या वो आपके सामने बाग वाले हों या ज़ुल्क़रनैन हों या खदर हों, सब आपको उस वक्त जो है वो भी नजर आ जाएंगे। अल्लाह सब ह्यूमैनिटी को इकट्ठा कर देगा। और आयत नंबर 100 में फरमाया वअरदना जहन्नम यौमा इज़िल लिल काफिरीन अर्दा, और उस दिन हम जहन्नम को काफिरों के सामने ले आएंगे, यानी जहन्नम को एक्सपोज कर दिया जाएगा। और जहन्नम को एक्सपोज किया जाएगा, अभी डाला नहीं जा रहा जहन्नम, सिर्फ जहन्नम दूर से दिखाई जा रही है। और आप सोचें कि कोई इंसान जो है उसको टॉर्चर सेल में रख के ये कहा जाए कि वो सामने जो कमरा है जिसके अंदर इस वक्त आग भड़क रही है, सून यू विल बी इनसाइड ऑफ इट। वो जाकर अंदर जलने की तकलीफ तो बाद में होगी, ये जो पहले का टॉर्चर है कि तुझे सामने कमरे में आग लगी हुई है, तुम्हें उसके अंदर हम फेंकने वाले हैं। और टॉर्चर सेल्स के अंदर क्या क्या नहीं होता है, और यह दुनिया का टॉर्चर सेल नहीं है, यह अल्लाह का बनाया हुआ टॉर्चर सेल है। और ये कब तक इंसान देखता रहेगा और कब तक इंसान इस अजाब में रहेगा, 50,000 साल तक। हमने हदीस पढ़ी थी ये वाली कि ये इंतजार का वक्त 50,000 साल का होगा, लेकिन मोमिन के लिए कितना होगा, सिर्फ उसकी एक खुशु के साथ पड़ी हुई नमाज के वक्त के बराबर उसको ऐसे महसूस होगा। और 50,000 साल तक काफिर जो है अल्लाह के नाफरमान उस जहन्नम को देख कर खौफ खाते रहेंगे, उसी निदामत और रिग्रेट और खौफ का शिकार रहेंगे। और ये अंजाम उनके सामने आ जाएगा, अपनी आंखों से उसको देखेंगे। और जहन्नुम का सामने आना आप कई दफा पढ़ते हैं, आई एम श्योर इंशाल्लाह आप लोगों को सूरतुल फजर याद होगी, नहीं है तो याद कीजिए, वजी अयउमा इज़िम बि जहन्नम, अल्लाह उस दिन जहन्नुम को सामने ले आएंगे। और हमने बात की थी कि जब जहन्नुम को लाया जाएगा इट विल बी अ वाइल्ड बीस्ट, 70,000 फरिश्तों ने उसकी 70,000 लगामों को थामा होगा। और बाज़ा हदीस में आता है कि हर एक उसकी रोप को 70,000 फरिश्तों ने पकड़ा हुआ होगा, और ये वाइल्ड होगी। और ये क्यों इसका साइज इतना बड़ा आता है, इट्स अ ह्यूमंगस साइज, इसलिए कि जो जहन्नमी होंगे उनके जिस्म भी ह्यूमंगस होंगे, ये जिस्म नहीं होंगे आपके और मेरे जो यहां पर है, वो अलग जिस्म अल्लाह ताला देगा। अल्लाह ने यहां पर कहा अरदना, हम उसको प्रेजेंट करेंगे, और आया है अरदना जहन्नमा यौमा इज़िन लिल काफिरीन, हालांकि जहन्नम जो है वो मोमिन और काफिर सब देखेंगे, लेकिन यहां खास तौर पर काफिरों का जिक्र है, इसलिए कि ये वो काफिर हैं जिन्होंने अल्लाह की दी हुई अलामात को अपने लिए सबक नहीं बनाया, जिन्होंने इल्म होने के बावजूद डिनाई किया अल्लाह उनके सामने जहन्नम को डिस्प्ले करेगा। और ये काफिर कौन होंगे इसका जिक्र आगे आयत नंबर 101 में आएगा। इंशाल्लाह कल यहीं से अपनी बात को शुरू करेंगे, और अल्लाह से दुआ करते हुए अल्लाह वक्त में बरकत दे, कल हम इंशाल्लाह सूरतुल कहफ को मुकम्मल करेंगे, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह खैर वाफिया से तकमील कराएगा। तकमील का टाइम 11:45 से बिटवीन 2 to 2:15 हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। आप लोग आराम से यहां बाद में अपनी नमाज पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला हमारे लिए कुरान के साथ जुड़ना, कुरान पर अमल करना, कुरान पर अमल करते हुए अपने पीछे बेहतरीन लेगेसी छोड़कर जाना इसको आसान बना दे। अल्लाह ताला हमें कुरान को ज़िक्रा बनकर अपनी जिंदगी में शामिल करने वालों में शामिल फरमाए। अल्लाह हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक को फॉलो करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे लिए हमें सबको जहन्नुम की आग से, कब्र के अजाब से और रोज़े महशर की सख्तियों से बचा कर रखे। अल्लाह हम सब के ऊपर अपना रहम फरमाए। अल्लाह जिनका इंतकाल हो चुका है उन तमाम मरहूमीन की बेहतरीन मगफिरत फरमाइए। अल्लाह ताला जो बीमार हैं उनको शिफाए कुल्ली अता फरमाइए। अल्लाह हमारे बच्चों को नेक हिदायत दीजिए और हिदायत पर उनको कायम रखिए। अल्लाह हमें हमारे वालिदैन के लिए और हमारी औलादों को हमारे लिए बेहतरीन सदका जारिया बना दीजिए। बारक अल्लाह ली वलकुम फिल कुरान अल हकीम व नाफ़ानी व इयाकुम बी आयाति व ज़िक्र अल हकीम सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता نستغفرك ونتوب إليك جزاك الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته